Option. Book number 5. Niko Sada, Master Sarvashaktiva. अनुभव करते हो मास्टर का अर्थ ही है कि हर शक्ति को जिस समय आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। ऐसे है जिस समय सहन शक्ति चाहिए उस समय स्वरूप में आती है कि थोड़े समय के बाद आती है। अगर मानो शस्त्र एक मिनट पीछे काम में आया तो विजयी होंगे, विजय नहीं हो सकती ना। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात शक्ति को ऑर्डर किया और हासिल। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को आए समान सामना करने की शक्ति तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। जैसे कोई परिस्थिति में सोचते हो कि किनारा नहीं करना है सहन करना है, लेकिन फिर सहन करते करते सामना करने की शक्ति में आ जाते हो। ऐसे ही निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन निर्णय शक्ति यथार्थ समय पर यथार्थ निर्णय नहीं ले तो उसको क्या कहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान या कमजोर। तो ऐसे ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वो शक्ति कार्य में आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाती है। सेकंड की बात है ना, निर्णय करना हाँ या ना, और हाँ के बजाय अगर ना कर दिया तो सेकंड का नुकसान सदा के लिए हार खिलाने के निमित्त बन जाता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है कि जो हर शक्ति ऑर्डर में हो, जैसे ये शरीर की कर्मेंद्रिया ऑर्डर में है ना, हाथ पाओ जब चलाओ जैसे चलाओ वैसे चलाते हो ना, ऐसी सर्वशक्तियां इतनी ऑर्डर में चले, जितना यूज करते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। तो क्या कह रहे बाबा, शक्तियों के लिए कह रहे हम सब कौन है, मास्टर सर्वशक्तिमान। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो। मास्टर का अर्थ ही है हर शक्ति को जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जो भी शक्ति का आह्वान करो तो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। वो कब होगा, जब समान की सीट पर बैठकर ऑर्डर करेंगे। तो अगर इस सीट पर बैठकर ऑर्डर नहीं करते तो शक्तियां तुम्हारा ऑर्डर मानेगी नहीं। अगर समान की सीट पर है तो शक्तियां बाबा के शब्द में बंधी हुई है तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए। तो ये सीट कौन सी है, समान की सीट है। सर्वशक्तिमान अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जिसमें सारी शक्तियां समाई, केवल स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाना है तो ऑटोमेटिक सारी शक्तियां वहां आ जाएगी। इसी को आज के मूल्य में बाबा ने होली के जो चार अर्थ है उसका एक अर्थ कौन सा है, रंग में रंग जाना। एक अर्थ है रंग में रंग जाना, एक अर्थ है हो जाना उसका, एक अर्थ है पास्ट इज पास्ट, और चौथा अर्थ है प्योर पवित्र। ये चार अर्थ होली में से जो एक अर्थ है वो है रंग में रंग जाना, जैसा वो है वैसे हो जाना। आज बाबा ने अशरीरी बन की बात की कि जब कहो कि अशरीरी बन जाओ तो उसमें फिर ये भी ना सोचना, ये सोच कि मैं तो शरीर आत्मा हूं ही, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा कैसी है आत्मा कहां है, ये है आत्मा का चिंतन, योग में चिंतन। पर योग अर्थात चिंतन भी नहीं, बोला और स्थित हो। इसमें भी तो समय चला गया ना, कुछ सेकंड चले गए, दो सेकंड चले गए, पांच सेकंड चले। अशरीरी अर्थात अशरीरी कहां और उसके स्वरूप में स्थित हो जाना, उसके ऊपर चिंतन भी नहीं, बस तुरंत स्थित हो जाना, ऐसी स्थिति बाबा को चाहिए। जो भी कुछ होता है ये खेल ही एक सेकंड का है। शक्तियां जो ट्रांसफर होती है वो एक सेकंड में ट्रांसफर होती है, एक सेकंड में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। बाबा को कितना समय लगा शक्तियां ट्रांसफर करने को दादी को? बस एक सेकंड। शास्त्रों में भी दिखाया हुआ है कि गुरुओं ने अपने शिष्यों को शक्तियां ट्रांसफर की, ट्रांसफर ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स। स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर की जा सकती है एक आत्मा से दूसरी आत्मा की। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को सारी शक्तियां ट्रांसफर की। रामायण में दिखाया कि राम वन में जहां भी जा रहा है, जिस जिस आश्रम में जा रहा है, उस ऋषि ने, उस गुरु ने, उस साधु ने, योगी ने, तपस्वी ने श्री राम को अपनी सारी शक्तियां दे दी, क्योंकि उनको पता था इसका ये क्यों आया है, इसे एक बहुत बड़ा युद्ध करना है। तो वहां दिखाया है कि जिसके पास भी जा रहा है, किसी ने अपनी शक्तियां दे दी, किसी ने अपने अस्त्र दे दिए, किसी ने शस्त्र दे दिए, अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों ने उसे दी। विश्वामित्र ने अपनी सारी शक्तियां दे दी उसे, शंकराचार्य के गुरु ने अपनी सारी शक्तियां उसे दे दी। अष्ट शक्तियां कहा जाता है। वैसे तो एक ही शक्ति है, एक ही शक्ति है, एक ही ईश्वरीय शक्ति, एक ही अलौकिक शक्ति है, परंतु अभिव्यक्ति उसकी अलग अलग है। शास्त्रों में आठ शक्तियों का गायन है, उसमें एक एक शक्ति इतनी बड़ी बड़ी शक्ति है, जैसे बहुत बड़ा हो जाना, बहुत छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, जो चाहे उसको प्राप्त कर लेना। आकाश गमन, समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर चलना, संजीवनी शक्ति, अलग अलग शक्तियां है। कोई मृत है उसको जीवंत कर देना, किसी के शरीर में प्रवेश कर जाना, ये सब महान शक्तियों का गायन है, इसे अष्ट शक्तियां। हनुमान जब सीता के पास आए तो सीता ने अपनी आठ शक्तियों से दे दी, और नव निधि अष्ट शक्ति नव निधि के था असवरदी न जाने की माता, उसको सारी शक्तियां दे दी। तो ये सब शक्तियों का गायन शास्त्रों में भी है, और बाबा भी यहाँ पर हमको आठ शक्तियां बताते हैं। कौन सी आठ शक्तियां? एक तो सहन करना, एक है समाना, एक परखना, निर्णय करना, सहयोग, समेटना और संकीर्ण करना, सामना करना। ये आठ शक्तियां बाबा होती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी शक्तियां है तो एक ही शक्ति, करंट एक ही है, पर उसी करंट से कहीं लाइट भी है जलता है तो कहीं फैन भी। जब हमको प्रकाश चाहिए तो लाइट की जरूरत है, वहां फैन काम नहीं करेगा। जिस समय जो शक्ति है वो स्वतः ही होता है, ऐसा भी नहीं कि आह्वान करो, बाबा ने कहा शक्ति ऑटोमेटिक काम करेगी। स्थित होते ही कोई आपका अपमान कर रहा है, वहां आपको आह्वान करने की जरूरत नहीं है कि अभी मैं इसको सहन करूं, स्वतः ही सहन होगा, क्योंकि समान में स्वतः स्थित है तो ऑटोमेटिक सब शक्तियां काम करेगी। हमको पता भी नहीं चलेगा कि शक्तियां काम कर रही है। दुख की स्थिति है, सहन करने की सब कुछ शक्तियां स्वतः आएगी। सामना करने की परिस्थितियां बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई, विकराल परिस्थिति आ गई, आज के मूल्य में 100 हिमालय से भी बड़ी परिस्थिति, 100 हिमालय, उसमें भी मेरे को तेरा कर दो। इतना छोटा सा त्याग करना है बाबा ने कहा, मेरे को तेरा। अगर ये भी नहीं होता तो दूसरा एक विकल्प दिया है, अगर ये नहीं होता है, मेरे को तेरा मतलब शब्दों में पढ़ा बाबा ने कहा तो बहुत छोटा सा अंतर है, मेरा तेरा कर दो। पर इसकी भी अगर बहुत प्यार है मेरे से, अगर आदत बन गई या संस्कार बन गया तो मेरा रखो फिर, ठीक है, परंतु सामने सामने परिवर्तन कर दो। ये नहीं होता तो दूसरा विकल्प है, अगर मेरे को तेरा नहीं कर सकते तो मेरा हम पावन कर दो। बस ये छोटा सा त्याग करो तो इतने बड़े भाग्य के अधिकारी बन जाओगे। रिचेस इन द वर्ल्ड, अरबपति खरबपति तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। रिचेस्ट अर्थात सर्वशक्तियां जिनके पास है, ऐसा खजाना उनके पास है जो कोई लूट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, राजा खा नहीं सकता, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता। स्ट्रोक। तो सर्वशक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां हमारे पास आठ छोड़कर, इसके पहले हमने कभी चर्चा की है इस बारे में? बोलो, पचास शक्तियां, ये आठ छोड़कर
सत्यता की शक्ति,
सत्यता की शक्ति पर कितनी सारी उंगलियां चली। सत्यता की शक्ति पर विश्वास होना, सत्य स्वयं सिद्ध है। बहुत सारे आरोप अगर लगाए जाते हैं, झूठे आरोप, उसमें व्यक्ति हिल जाता है। अपवित्रता के आरोप लगाए जाते हैं तब व्यक्ति हिल जाता है, संघर्ष करता है, झगड़ता है, जिद और सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उस परिस्थिति में भी शांत रहना, यह है सत्यता की शक्ति पर विश्वास। आज की दुनिया में जितने कोर्ट केसेस है सब में असत्य का ही बोलबाला है। संसार में असत्य की विजय है सब, परंतु असत्य की जो नाव है वो हिलती डुलती नहीं है, वो सीधा ही डूबती है। सत्य की नाव हिलती डुलती है पर डूबेगी नहीं, पर असत्य की नाव सीधा सीधा और एकदम अचानक एक दिन डूब जाएगी। तो सत्यता की शक्ति पर विश्वास, एक है सत्यता की शक्ति, फिर निश्चय की शक्ति, मोल्डिंग नेचर, मोल्डिंग पावर, द पावर टू मोल्ड, स्वयं को फ्लेक्सिबल कर देना, स्वयं को मोल्ड कर देना परिस्थिति अनुसार। दृढ़ता की शक्ति, इसमें अच्छा ठीक है, एडजस्ट होने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। आज कंट्रोलिंग पावर पर लोगों ने कहा है, वही है शरीरपन की पॉइंट्स के लिए। कॉन्सेंट्रेशन पावर, उसी में हो गया। एकाग्रता की शक्ति में बहुत सारी चीजें आती है, एक एकाग्रता की शक्ति, उसी के साथ पवित्रता की शक्ति जुड़ी है। जितनी ज्यादा पवित्रता उतनी ज्यादा एकाग्रता, पावर ऑफ प्यूरिटी, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पावर टू हियर, श्रवण शक्ति, देखने की दृष्टि की शक्ति, विजुअलाइजेशन की शक्ति, कल्पना की शक्ति, पावर टू इमेजिन। ऐसे कहा जाता है इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, अनुभूति की शक्ति, रियलाइजेशन की शक्ति और संकल्प की शक्ति, मन की शक्ति, संकल्प की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। संकल्प की शक्ति तो सबसे अधिक शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिमान, अर्थात ही जो अपने संकल्प से ही सब कार्य करते हैं। केवल बैठे हैं यही की जगह, परंतु संकल्प किया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा, अगर उतना विश्वास है तो। शुभ भावना और शुभ कामनाओं की शक्ति,
विल पावर,
इच्छा शक्ति, निर्भयता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। बाबा ने एक मुरली चलाई है, संग्राम करने की शक्ति और संग्रह करने की शक्ति, संग्रह शक्तियों को संग्रह करने की शक्ति और माया से संग्राम युद्ध करने की शक्ति, ये दो साथ साथ है। संतुष्टता की शक्ति, ये संतुष्टता का युग है। कल कहा ना, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना, ये संतुष्टता का युग है।
संग्रह कौन सा?
शक्तियों का संग्रह, स्टोरेज ऑफ पावर्स,
एक्सेप्टेंस,
स्वीकृति, स्वीकार करना परिस्थितियों को, जो परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते, उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को स्वीकार करना। मुझे याद है मैं कभी बहुत पहले किसी एक सेंटर पर गया था, बहुत ही छोटा सा शहर जैसा था, वो कोकण एरिया था, कि जहां पर वो जो सेंटर था वहां पर केवल दो ही लोग आते थे स्टूडेंट्स, और कई सालों से केवल ओनली टू स्टूडेंट्स। और ऐसे नहीं कि वो बहन सेवा नहीं कर रही है, क्योंकि वहां सब फिश खाने वाले, मछली खाने वाले लोग ज्यादा है, तो उनको पता है ब्रह्मा कुमारी में आना मतलब ये सब छोड़ना पड़ता है, तो कम आते, कोर्स करते हैं पर कोई स्टूडेंट नहीं बनते। तो वहां पर केवल दो ही स्टूडेंट कितने सालों से। तो मैंने उस बहन से पूछा था आपको कैसे लगता है, तो उसने कहा कि मैंने, क्योंकि वो बहन पहले कहीं किसी और सेंटर पर थी, वहां पर इतनी सेवाएं थी, इतनी सेवाएं थी गोवा के उधर, और अभी जहां पर है वहां सेवा ही नहीं है, मतलब लोग आते नहीं है। तो उसने कहा इस परिस्थिति को मैंने स्वीकार किया है, प्रेम से स्वीकार किया है, और मैंने इसको लक्ष्य बनाया कि अपनी, चलो ये सेवाएं नहीं है तो ज्ञान और योग से अपने आप को संपन्न बनाना, ऐसे नहीं कि उदास हो जाना, सेवाएं तो करते पर होते नहीं, कोई कोई जगह होता है ऐसा। तो इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, बहुत ही अच्छी पावरफुल पॉइंट है ये। जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसे संपूर्ण प्रेम में समझ से उसे स्वीकार कर लेना और फिर उसको लक्ष्य बनाना, इस परिस्थिति में भी मैं अपनी स्थिति को शक्तिशाली रखूंगी, हलचल में नहीं आऊंगा। अचल रहने की भी एक शक्ति है, हलचल में न आने की शक्ति है,
शांति की शक्ति,
शांति की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, स्नेह की शक्ति, तो सबसे बड़ी शक्ति है संसार की,
साइंस की,
वो तो है स्नेह,
सभी एक और शक्ति है माया की शक्ति,
प्रेम की शक्ति। प्रेम एक ऐसी शक्ति है इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम की, प्रेम से ही सबको जीता जा सकता है। प्रेम एक अनुभूति है, कोई विचार नहीं है, प्रेम एक ऐसी चीज है। परमात्मा प्रेम तो सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार की, परमात्मा प्रेम से सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ जो विरोधी है उसको अपना बनाया जा सकता है, जो कितना ही कट्टर कट्टर विरोधी है। कल मैं एक अनुभव पढ़ रहा था जिसमें दिखाया है कि 1956 और 67 की बात है, जगदीश भाई ने लिखा है किताब में कि उस समय ब्रह्मा बाबा की तबीयत खराब हो गई और यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि इनको ऑपरेशन की जरूरत है, और उस समय फिर ये निर्णय लिया कि वो यहाँ नहीं हो सकते, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को मुंबई लेके जाना पड़ेगा। तो वहां पर सबके चेहरे, जैसे कि बाबा को बोला गया तो फिर बाबा ने भी स्वीकार किया, ठीक है। तो उस समय देखा कि उनका जो चेहरा है उसमें कोई दर्द नहीं है, उसमें कोई पीड़ा नहीं है, वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कैंसर टाइप हो सकता है और ऑपरेशन की जरूरत है, क्या बीमारी है वो लिखा नहीं है उसमें, परंतु ऐसी कोई बीमारी है। तो उसमें ऐसा दिखाया है कि बाबा की जो भावना थी, बाबा ने कहा कि बाबा मुंबई जाने का ये जो बस ये सेवा के लिए ही जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पर यज्ञ की शुरुआत में कई लोगों ने विरोध किया था, वो बाबा के जो मित्र संबंधी आज वो मित्र संबंधी अभी भी मुंबई में है, और एटलीस्ट लोकाचार की रीति से वो देखने तो आएंगे बाबा को, लोक लाज की रीति से, चाहे कोई कितना भी विरोधी होता है अगर कोई बीमार पड़ता है अपना उसको देखने तो आएंगे, वो बस देखना आना ही सेवा हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा कि मैं राजी हूं वहां जाने के लिए, नहीं तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, केवल सेवा अर्थ मुंबई जा रहे। और फिर वो जिस अस्पताल में गए वहां पर भी बहुत सुंदर वर्णन किया है कि जैसे सबको वहां पता चल गया कि भाई कोई महान आत्मा आई है, कोई योगी आत्मा आई है, तो वहां की नर्सेस, वहां के डॉक्टर्स, उसमें तो बहुत सुंदर अनुभव लिखा है कि वहां का जो डॉक्टर था वो ऐसा था कि बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन था, परंतु उसको एक आदत थी सिगरेट, इतनी सिगरेट पीता था, चेन स्मोकिंग जिसको कहते, कि अभी ये पूरी हुई नहीं कि दूसरी जला कर रेडी चेन स्मोकिंग अर्थात ये अभी बुझी नहीं है तो दूसरी जला कर रेडी करके रखना, तो ऐसा था। और उसने तो ये मान लिया था, कितने सालों से मैं पी रहा हूं, आज तक किसी ने ये छोड़ना असंभव है, इतना वो स्मोकिंग। यहां तक की बात चलती थी कि जब ऑपरेशन करता था तो अभी कोई ना कोई वहां पे जलती रहती थी कभी कभी, इतनी उसको आदत थी। तो बाबा को वहां लेके गए तो वो एक बुजुर्ग था डॉक्टर, बहुत एक्सपीरियंस था और बहुत बुजुर्ग था। तो बाबा को ये बताया गया कि ऐसा एक डॉक्टर है जिसके पास हम जा रहे हैं, उसको स्मोकिंग की आदत है तो, और वो कभी छोड़ बहुत सालों से है। तो बाबा ने कहा ठीक है, उसकी भी छूट जाएंगी। तो वो दिखाया उसमें पहला इंटरेक्शन दोनों का, कि मतलब वो एक्चुअली बुजुर्ग था, उसकी उम्र 60 के ऊपर ही होगी लगभग। तो बाबा ने जो पहला उच्चारण उसको कहा कि बच्चे कहा, तो उसको भी एकदम आश्चर्य लगा कि मेरी उम्र की आदमी को कोई बच्चे कहता है, उसको उसने सोचा ही नहीं था कभी। तो वहां से उसका थोड़ा थोड़ा चिंतन वो चालू हो गया, क्योंकि बच्चे कहा था मतलब वो थोड़ा फादर लाइक फिगर हो गया ना, उसके सामने उसके ऑपरेशन में स्मोकिंग वगैरह करना, उसको थोड़ा वो डर गया उसने बहुत सुंदर वर्णन दिखाया, फिर कैसे उसने धीरे धीरे छोड़ दिया। उसमें और एक बात बहुत अच्छी कही है कि वहां पर ये बताया गया है कि ऑपरेशन के दरमियान बाबा को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। तो बाबा ने कहा कि ये शरीर जो है ये ईश्वर को अर्पित है, इसमें किसी भी देहधारी का खून नहीं जाएगा, रिफ्यूज कर दिया। तो फिर संतरी दादी को लाया गया, संतरी दादी ध्यान में गई और फिर बाबा ने संदेश भेजा कि जो भी ब्लड बाबा को दिया जाएगा शिव बाबा खुद उस ब्लड का शुद्धिकरण करेगा। तब वो बाबा राजी हुए, ऑपरेशन चालू हुआ, ऑपरेशन इस कमरे में हो रहा था, बाजू के कमरे में संतरी दादी बैठी थी बीच में ऐसे जो क्या कहते हैं कांच का, और वो देखने के लिए कि ये ब्लड कैसे शिव होगा ट्रांसफर करता है, शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है। इस तरह का बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ है उसने। तो ये थी प्रेम की शक्ति,
लैंग्वेज की भी,
फिर बोल की शक्ति, वाक शक्ति जिसको कहते हैं, बोल की भी शक्ति, सबसे पहले तो योग की शक्ति, योग बल,
संकल्पों की,
संकल्प का हो गया योग बल, और
समय की
शक्ति, अहिंसा की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, और क्षमा। अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा। तो क्षमा, रहम की शक्ति, रहम दे, और
धर्म की शक्ति,
समझ की शक्ति,
धर्म की,
ज्ञान की शक्ति कहाँ है? त्याग की शक्ति, तपस्या में योग बल और तपस्या,
पुण्य की शक्ति,
पुण्य की शक्ति, पुण्य कर्मों की शक्ति, दुआ है, दुआएं होती है ना, वो अपने आप में एक शक्ति है, जिसके पास बहुत दुआ है स्वतः ही चलता है। वरदान भी जैसे एक शक्ति है, जो परमात्मा वरदान मिलते हैं वो भी शक्ति है। फिर दृढ़ता हो गया,
अनुभव
भी हो गया,
दृष्टि,
निर्णय आठ में आ गया, दृष्टि हो गया,
विजन,
मनन, मंथन,
सहयोग,
सहयोग तो आठ में आ गया, चिंतन की शक्ति, स्मरण की शक्ति, मनन की शक्ति। शास्त्रों में तीन चीजें लिखी है, एक है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण अर्थात सुनना, जो सुना फिर उसका मनन करना, और निधिध्यासन मतलब उसको प्रैक्टिकल में लाना। तीन स्टेप्स बताइए किसी भी चीज को ग्रहण करने के लिए। पवित्रता की शक्ति में, और अगर थोड़ा उसके इसमें जाओ तो ब्रह्मचर्य की शक्ति आती है, ब्रह्मचर्य और पवित्रता। ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य अपने आप में शक्ति है। जब ब्रह्मचारी है कोई, एक होता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, एक है मेमोरी पावर, वो भी पावर ही है ना। जितनी ज्यादा प्यूरिटी उतनी ज्यादा एकाग्रता और उतनी ही ज्यादा स्मरण शक्ति। जानकी दादी का अगर क्लास सुनो तो उस क्लास में कितनी पुरानी पुरानी बातें दादी बताती है, किसने कब कितना किलो चावल दिया था वो भी याद है, 10 किलो चावल इसने दिया था वो सब याद है, एक एक का नाम भी याद है, बहुत सारा पुराना जो भी है जैसे कि छपा हुआ है पूरा, इतनी शक्तिशाली स्मरण शक्ति। तो पावर टू मेमोराइज, पावर टू रिमेम्बर, रिमेम्बरेंस, मौन, साइलेंस पावर तो सबसे बड़ी शक्ति है इस संसार की, सबसे बड़ी, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर खाली कोई मौन रह जाए तो वाचा के द्वारा जो हमारी शक्ति का नाश होता है, दिन भर कुछ ना कुछ निकलते रहता है। तो ये जो शक्ति है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में बहुत सुंदर चीज लिखी है उन्होंने, कि जो वो बताते हैं अपने अनुभव, जब वो पहली बार साउथ अफ्रीका गए तो उनको बोलते नहीं आता था, भाषण देते नहीं आता था, उसको बोलते नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आती थी बोलना, तो वो चुप रहता था। वो उन्होंने कहा मैं, पर उन्होंने कहा कि ये जो मेरा चुप रहना था, एक बहुत सुंदर वाक्य है उसमें, द पावर टू मॉडिफाई और सप्रेस द ट्रुथ इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ मैन एंड साइलेंस इज नेसेसरी फॉर टू स्टॉप दिस। कि मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव है, वो सत्य को, सत्य के साथ छेड़छाड़ करता है, सत्य को मॉडिफाई करता है या उसको दबाता है, सप्रेस करता है, और उसको एकदम अपने सुविधाजनक ढंग से बोलता है। ये सब के लिए मौन रहना बहुत जरूरी है, और अध्यात्म के साधक के लिए तो मौन वरदान है। मौन और एकांत, ये दो चीजों के बिना अध्यात्म में प्रगति हो ही नहीं सकती। जो व्यक्ति जितना मौन है, ऑटोमेटिक उसमें शक्ति आ जाती है, केवल मौन रहने से, केवल मौन, चाहे अंदर कुछ भी सोचे, परंतु अगर मौन भी रहता है केवल, तो ऑटोमेटिक शक्तियां भरनी चालू हो जाती है।
म्यूजिक के लिए भी होना चाहिए, साइलेंस और साइलेंस, दोनों, म्यूजिक,
साउंड एंड साइलेंस, म्यूजिक के लिए,
म्यूजिक नहीं बजना तो शोर ही हो जाएगा।
आपने और एक कहा था विज्ञान की शक्ति, वो भी साइलेंस और साइंस,
शीतलता
की शक्ति, और
इंटेग्रिटी को क्या कहते हैं,
समग्रता, वो भी एक शक्ति, धन की शक्ति, नहीं धन, धन की भी शक्ति, संसार में तो सबसे बड़ी धन की शक्ति, धन की शक्ति, शारीरिक फिजिकल पावर, मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर्स,
बुद्धि भी तो चाहिए।
हाँ, बुद्धि, बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। ये सारी शक्तियां केवल एक शब्द थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। परमात्मा शक्तियां स्वतः ही आनी चालू होगी। परमात्मा शक्ति, अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, दैवी शक्ति, ये सब नाम है। फिर इन सब शक्तियों के हमने तो कुछ ही गिना, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी शक्तियां हैं, असंख्य शक्ति है, असंख्य, जितनी गिनती करो उतनी वो बढ़ती जाएगी। फिर पावर टू ब्रेक, क्या तोड़ने की शक्ति, व्यर्थ की स्टॉप स्टॉप
कर दिया था, किसी
छुपाना की शक्ति, हाँ वही ना, कंसील अर्थात छुपाना, रिवील अर्थात प्रत्यक्ष करना, प्रकट करना। किसको छुपाना? ये गुप्त लॉ है, बाबा ने कर कहा था। ये गुप्त गवर्नमेंट है।
इमर्ज मर्ज बोले,
इमर्ज करने की शक्ति, स्मृति की शक्ति, एक है स्मृति और विस्मृति का जो खेल है ना, उसमें स्मृति की वो हो गया पावर, रिमेम्बरेंस में आ गया।
संगठन की,
संगठन वो आठों में आ गया, आठ में सहयोग में, अच्छा चलो फिर भी ले सकते हैं। संगठन की शक्ति, महसूस, रियलाइजेशन पावर, और महसूसता और अनुभूति साथ साथ है। एक है महसूस करना, एक है रियलाइज करना उसको, ये भी शक्ति है।
परिवर्तन करने की,
ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया।
पुरुषार्थ की शक्ति है,
पुरुषार्थ के लिए शक्ति जरूरी है। तो फिर आगे बाबा कहते हैं, माताओं में समाने की शक्ति है, या थोड़ा
शिव शक्ति
या थोड़ा कुछ होती है तो क्रोध आ जाता है, थोड़ा बच्चों पर क्रोध आ जाता है, पांडवों को गुस्सा आता है, बच्चों को नहीं, बड़ों पर आता है। सदा अपना ये समान स्मृति में रखो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस समान की सीट पर सदा स्थित रहो, जैसे सीट होती है वैसे लक्षण होते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट पर सेट नहीं होते तो शक्ति अभी ऑर्डर नहीं मानती, सीट वाले का ऑर्डर माना जाता है। तो सीट तो सेट होना आता है ना, सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते। पापा ने कभी कहा है साक्षी पन की सीट पर सेट हो जाओ तो तुम्हारी क्या माया दब जाएगी, तुम्हारे सीट के नीचे माया दब जाएगी। सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं होते, या तो है सेट या तो है अपसेट। लक्ष्य अच्छा है, लक्षण भी अच्छे हैं, सभी महावीर है, कभी कभी सिर्फ थोड़ा माया से खेल करते हो। अब के विजय ही सदा के विजयी बनेंगे, अब विजयी नहीं तो फिर कभी भी विजयी नहीं बनेंगे। इसलिए संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग, असंभव को संभव बनाने का युग। द्वापर कलयुग कौन सा युग है? द्वापर कलयुग,
द्वापर कलयुग
नहीं, ये है विजयी बनने का, और वो विजयी बनने का, और ये हार खाने का युग। और संगम युग विजय प्राप्त का युग है। इस युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। नया प्लान कौन बनाया है? अच्छा है, जितनी सेवा बढ़ाते हो उतना स्वयं को आगे बढ़ाते हो। औरों की सेवा करने के पहले अपनी सेवा स्वतः ही हो जाती है। अब कोई ऐसे नामी ग्रामी माइक निकालो जो स्नेह के साथ समीप वाली आत्मा बन जाए, जिस एक द्वारा अनेकों की सेवा सहज होती रहे। बाबा की हमेशा शायद नजर रहती है हर साल किसी एक माइक पर, और उस समय ऐसी मुरलियां चलती है, और वो चाहता है कि मैं उस तक नहीं पहुंचू, ये बच्चे उस तक पहुंचे। इस तरह के वाक्य आते हैं। अभी ऐसी विशेष आत्माएं मैदान में पर आओ, समझा? अच्छा, तो क्या सुना? हम सब मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा है। इस समान की सीट पर सेट रहोगे तो सर्वशक्तियां स्वतः ही ऑर्डर मानेगी, स्वतः ही आएगी, स्वतः ही काम करेगी। और दूसरा विजय के बारे में, विजयी आत्मा है तो लक्ष्य अगर ऊंचा है तो लक्षण स्वतः ही आएंगे। ब्राह्मणों के जीवन में सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है? संगम युग में स्वर्णिम दिन, जब इतिहास लिखा जाएगा, अगर ब्राह्मणों का इतिहास लिखा जाए, हिस्ट्री, तो गोल्डन डेज ऑफ द लाइफ ऑफ ब्राह्मिन लाइफ कौन से है? जब संसार में भगवान अवतरित होता है, वो दिन जिस समय भगवान इस धरा पर आया है और हम उसके सामने बैठे हैं, हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से वो दिन है। वैसे तो वो रोज मिलता है, परंतु जब वो अव्यक्त वतनवासी, दूर देशवासी अपना वतन छोड़कर साकार वतनवासी बनता है और अपने स्नेह का रिटर्न देता है, लास्ट संडे की मुरली, ये उसका प्यार है। उसके प्यार के लिए वो छोड़कर यहाँ आता है, तो ये तो तुम क्यों नहीं बन सकते, मैं तुम्हारे लिए ऐसे कर सकता तो तुम क्यों नहीं बन सकते। अरे जादूगर आया है तो क्या करो, कल की मुरली उसका हाथ पकड़ लो। तो कहा ना बाबा ने, जादूगर आया है तो उसका तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। क्या क्या
हनुमान को कहते हैं उसे पूछ पकड़ के
तो जादूगर आया है तो जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो हमारे जीवन के सबसे गोल्डन डेज वो है जब जब वो धरा पर आया है और हमारा और उसका मिलन हुआ है। ये हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन है, ये अनुभव के दिन है जब स्वयं भगवान हमारे सामने बैठता है। कोई शंकराचार्य नहीं है इस संसार में जो कह सकता है कि हमने भगवान को देखा है, केवल हम ही है इस संसार में कि जो ये कह सकते हैं कि हमने इन आंखों से उसको देखा है जो सृष्टि का नियंता है, जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसने हिमालय की गुफाओं में बैठकर आज भी सन्यासी तप कर रहे हैं उसको देखने के लिए। अगर उन सारे सन्यासियों को ये खबर मिल जाए कि भगवान माउंट में आया है तो क्या हो जाएगा, आबू में भाग जाएंगे। अगर उन भक्तों को पता चल जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट इसमें आ जाए कि गॉड हैज अराइव्ड, तो क्या हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, हड़कंप कोहराम हो जाएगा संसार में कि भगवान स्वयं इस धरा पर अवतरित हो रहा है आज इस समय। कैसी हलचल हो जाएगी, सारे सन्यासी और सारे भक्त सबके सब आ जाएंगे, सारे संसार के मंदिर और आश्रम खाली हो जाएंगे और सब यहां पहुंच जाएंगे। वैसे भी खाली हो जाते हैं एक रीति से, क्यों, क्योंकि उसमें जो देवी है वो सब यहाँ है, तो अपने अपने मंदिर छोड़कर देवियां इधर आ जाती है भगवान से मिलने, तो मंदिर तो वैसे भी खाली हो जाते हैं। बिना मंदिर बिना मूर्ति के देवी के मंदिर के किस काम का जी। 18 नवंबर 93 की मुरली, कहाँ चली है मुरली, ओम शांति भवन में यही चली हुई है ना। तो आज अव्यक्त बाबा का जो नवंबर 93 जब जब संसार में वो आता है और उससे आज हमारा मिलन होने वाला, उसकी स्थिति अव्यक्त है। तो अव्यक्त बाप दादा से मिलन की विधि कौन सी है, अव्यक्त स्थिति। कौन कहाँ बैठा है, क्या है उसको, वो सब उसमें नहीं जाते, वो परम शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। वो जैसे ही धरा पर आता है उसकी किरणें संपूर्ण भूमंडल पर फैलती है, उसका मैग्नेटिक ऑरा और मैग्नेटिक फील्ड सभी ओर होती है। जो जहां बैठा है उसको वहां ही साक्षात्कार हो सकता है, वहां ही उसको अनुभव हो सकता है, वो उसके आते ही दिव्य अनुभूति हो सकती है। वो तो केवल भावना की बात है, स्थिति की बात है। जिसकी स्थिति अव्यक्त है बस वही उस अव्यक्त बाप दादा से मिलन बना सकता है। अगर देह में देहभान वाली स्थिति है उसमें अनुभूति नहीं हो सकती, भले वो स्टेज पर चला जाए और वहां घूमे फिरे, पर अनुभूति नहीं हो सकती है। अनुभूति इतनी सस्ती चीज नहीं है कि स्टेज पर पहुंच जाओ और मिल जाए। अतीन्द्रिय सुख कितना सस्ता समझा लंबे समय की धारणाएं चाहिए, लंबे समय का अमृत वेला चाहिए, हर दिन उससे जो मिलन मनाता है, हर दिन जिसको दिव्य ज्ञान की अनुभूति है, जिसकी बुद्धि में ज्ञान की सरिता बहती रहती है, ऐसी आत्मा ही अनुभव कर सकती है वहां बैठकर, बाकी नहीं।
सब है ना,
सब अपने अपने को देख ले जो प्यार बाप के प्यार में खोई हुई आत्मा है उन्हें ही अनुभव होता है। जो मौन है, जो खोई हुई है, जो ज्ञान चिंतन में है, जिनके हृदय में बाबा के अतिरिक्त और कुछ समाया ही नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन उसको दे दिया है, ऐसा समर्पण भाव जहां है वहां जब भगवान आते हैं तो उनके द्वारा उसके द्वारा उन उन आत्माओं को अनुभव होता है। बाकियों को भी होता है, वो अल्पकाल का, स्टेज पे चले जाओ बाबा के हाथ से टोली खा लो तो अल्पकाल का तो सुख मिल जाएगा, पर एक होता है अनुभूति, वो तो शायद उसको हो रही होगी कोई पीछे, सबसे पीछे जो माता बैठी है उसको कुछ दिख भी नहीं रहा है, उसको शायद समझ भी नहीं रहा है बाबा के बोल रहे, परंतु बाप के प्यार और याद में इस तरह खोई है कि वही उसको पता, ऐसा दिव्य अनुभव होगा शरीर पंखा कि आंखों से आंसू बहने लगे। बाकी जो सामने बैठे तर्क बुद्धि से सोच रहे क्या है क्या है, उनको उतना नहीं हो। एक ये भी होता है ना कि आज तो होली है, पता नहीं बाबा अगर दिवाली वापस मना ले तो क्या करेगी। फिर वो किस तरह का सोच, एक है बस बाबा भगवान आया है वो बोल रहा है, जैसे वो दिखाया ना चैतन्य महाप्रभु एक बार जा रहे थे, एक भक्त देखा उन्होंने और वहां पर गीता चल रही है, वो चल रही है तेलुगु में और वो भक्त रो रहा है, उसने कहा तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, तो बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है, मैं खाली इतना देख रहा हूँ कि रथ है जिसमें श्री कृष्ण है और अर्जुन है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे, बस ये दृश्य देखकर ही मुझे आंसू आ रहे हैं, बस वो क्या बोल रहे पता नहीं। तो प्रेम जो होता है उसकी भाषा कुछ और होती है, दिल की भाषा कुछ और है, बुद्धि की भाषा कुछ और है, यहाँ तो जो सौदा है प्रेम का सौदा है। तो जो बाप की याद में खोए सारे दिन भर अमृत वेले से लेकर शाम तक, जो उसको आह्वान करते रहे उसको पुकारते रहे कि आज तुम आ जाओ, उसको आह्वान करना है ना, बिना निमंत्रण के थोड़ी आता है, उसको बड़े लोगों को निमंत्रण देना होता है, तो आज सुबह से उसको निमंत्रण दो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों आ जाओ, सबके कल्याण के लिए आ जाओ, हमारे लिए आ जाओ, तो वो आएगा। अपनी जैसे सूरज भाई हमेशा कहते हैं ना, अपनी कोई कमजोरी जब वो दृष्टि देता है उसको दे दो, कई लोग उसमें भी लिखते रहते हैं, बीच में बाबा ड्रिल कराते रहते हैं उसमें भी पॉइंट्स लिखते रहते हैं, इधर ड्रिल चालू है उधर लिखना चालू, वहां पे लिखना सब बाजू में, और वो आया है और उसकी उसमें खो जाना, जब बाबा बैठा भी हुआ है तो भी एक आंतरिक अभ्यास चालू रहे कि सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां निकल कर मुझ में समा रही, मुरली चल रही है परंतु साथ साथ हमारा योग भी चलता है, एक तरफ मुरली भी सुन रहे एक तरफ योग भी, सर्वशक्तियां आ रही है शक्तियां समा रही। तो सारे दिन भर मौन की स्थिति, अंतर्मुक्ता की स्थिति, एकांत की स्थिति, स्वचिंतन, मुरली का चिंतन, जो आज की मुरली है उसको ही दिन भर अध्ययन करते रहना शाम तक, आज अव्यक्त वाणी जो है उसी का चिंतन करते रहना शाम तक, ज्ञान मगन अवस्था रहे तो ऑटोमेटिक योग मगन अवस्था शाम को हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।